বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ কি জয়। শ্রী শ্রী রাধা মদন মোহন কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। শ্রী শ্রী পঞ্চতত্ত্ব কি জয়। সমবেত ভক্ত বৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি
হরে কৃষ্ণ। তুম কহা থা চিরাগ আয়া নেই কে ইতনে দিন তুমকো দেখা নেই কাল নেই আয়া পরসো নেই আয়া কহা থা তুম ঘর পে আচ্ছা তো আজ ভগবদ গীতা কা হাম ভগবদ গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় কা 32 শ্লোক পর বিচার করেনগে পাঠ করেনগে। তো ইয়ে শ্লোক ইয়াদ করার কোশিশ করেনগে হাম। হ্যাঁ কোন করার চাহতে হ্যাঁ হাত উঠাই। আচ্ছা বহুত আচ্ছা। তো ইয়ে শ্লোক 31 হ্যাঁ 32 নেই 31। স্বধর্মং অপি সধর্মম অপি চাবেক্ষ্য না বিকম্পিতুম অর্হসি না বিকম্পিতুম অর্হসি তো ইস লাইন কা ইয়াদ কিসকো হো গয়া আব তক অর কোন আচ্ছা তুমকো হুয়া হ্যায় আচ্ছা বতাও ওকে না বিকম্পিতুম অর্হসি বহুত আচ্ছা তুমকো ইয়াদ আয় রোহিত হ্যাঁ হুয়া ইয়াদ কোশিশ করো থোড়া পহলা পহলা লাইন কা পহলা শব্দ ক্যা হ্যায় চিরাগ তুম বতাও নেই আ রহা তুমকো ইয়াদ হ্যায় স্বধর্মম অপি চাবেক্ষ্য তিনবার না বিকম্পিতুম অর্হসি ধর্মাদ্বি যুদ্ধ শ্রেয়া অন্যাত যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ান্যাত ক্ষত্রিয়স্য না বিদ্যতে ক্ষত্রিয়স্য না বিদ্যতে সধর্মমপি চাবেক্ষ্য না বিকম্পিতুম অর্হসি ধর্মাধ্বি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়ান্যাত ক্ষত্রিয়স্য क्षत्रियस्याना विद्यते अच्छा इस श्लोक का अर्थ क्या है स्वधर्मम का अर्थ है अपने धर्मों को अपि भी च शब्द का अर्थ क्या है निस्संदेह आवेक्षा विचार करके ना कभी नहीं विकंपितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम यज्ञ हो धर्मात धर्म के लिए ही निस्संदेह युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय श्रेष्ठ साधन अन्यत कोई दूसरा क्षत्रियस्य क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है तो हर शब्द का अर्थ अब पता चल गया तो पहला शब्द क्या है स्वधर्मम स्वधर्मम का अर्थ क्या है अपने धर्म को सधर्मम अपि चावेक्ष सधर्मम अपि अपि का मतलब है भी चा का मतलब क्या है निस्संदेह आवेक्ष का मतलब क्या है विचार करके सधर्मम अपि चावेक्ष अपना धर्म के बारे में विचार करके ना विकंपितुम अर्हसि तुमको क्या करना चाहिए नहीं चाहिए विकंपितुम का अर्थ क्या है बहुत अच्छा हाँ आप बताइए विकंपितुम का अर्थ संकोच करने के लिए मतलब अपना धर्म के बारे में विचार करके तुम्हें ये संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि धर्मात भी धर्मात ही धर्म के लिए किसके धर्म के लिए क्षत्रियस्य न विद्यते क्षत्रिय का धर्म के लिए युद्ध करने से और आगे बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई धर्म नहीं है तो क्षत्रिय का धर्म क्या है युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म क्या है हाँ हाँ ब्राह्मण का धर्म है कार्य क्या है जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह पठन खुद पढ़ना को क्या पाठ करना शास्त्र पाठ करना शास्त्र अध्ययन पाठन और दूसरे को पढ़ाना खुद पढ़ के ज्ञान प्राप्त होके शास्त्र ज्ञान प्राप्त होके दूसरे को उस ज्ञान प्रदान करना और जजन और जाजन पूजा अर्चन और दान प्रतिग्रह दान ग्रहण करना और अगर अधिक दान मिल गया तो दूसरे को दान कर देना अब ब्राह्मण अपने के लिए कुछ नहीं रखते हैं जितना प्रयोजन है जितना जरूरत होता है वही केवल लेते हैं और बाकी दान कर देते हैं खुद दान ग्रहण किया है परंतु अधिक जो रह गया वो दूसरे को दे देते हैं और क्षत्रिय का धर्म क्या है क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना कौन सी युद्ध करना चाहिए धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए धर्म का रक्षा करने के लिए हाँ छत ये छत का अर्थ क्या है छत शब्द का अर्थ क्या है नहीं छत शब्द का अर्थ है आघात क्षतात त्रायते इति क्षत्रिय आघात से त्राण करते रक्षा करने वाला है उसीलिए वो क्षत्रिय है तो क्षता त्रायते इति क्षत्रिय तो किसके समाज को और धर्म को रक्षा करने वाला है क्षत्रिय तो ये क्षत्रिय के लिए युद्ध करना, लड़ाई करना ही उसका धर्म है। उसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ, धर्मान भी युद्धा श्रेय अन्नत क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करने से आगे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। वैश्य का धर्म क्या है? कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। हर वर्ण जो ये चार वर्ण है समाज में, केवल हिंदू समाज में ही नहीं, सारा दुनिया भर हर मनुष्य समाज में ये चार वर्ण है। चार वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण, ये चार वर्ण कौन बनाया है? आपको पता है कौन बनाया ये चार वर्ण? स्वयं भगवान बनाए हैं। भगवान उसके बारे में क्या कह रहे हैं गीता में? चातुर्वर्ण माया सृष्ट गुण कर्म विभाग। चार वर्ण मैं बनाए हूं, किसके अनुसार? गुण और कर्म की अनुसार, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के अनुसार ये चार वर्ण का विभाग हुआ है। तो ये चार वर्ण है, तो ये चार वर्ण भगवान बनाया। भगवान क्या केवल हिंदुओं के लिए बनाए हैं? नहीं, भगवान जो बनाते हैं सबके लिए बनाते हैं। ऐसे केवल मनुष्य में नहीं, जानवरों में भी चार चार तरीका का जानवर है। आपको पता है जानवरों में से ब्राह्मण कौन है? गाय। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय है शेर। वैश्य कौन है? वैश्य, वैश्य है जैकल, फॉक्स। वो बहुत चालाक होता है, वो एक जगह के कारोबार बहुत दूसरी जगह में। और शूद्र कौन है? बाकी सब जगह। जैसे कुत्ता शूद्र है, देखिए कुत्ता, शूद्र का काम क्या है? प्रभु को सेवा करना। आप कुत्ते को देखते हैं अपना प्रभु को बहुत मानता है। तो ये जानवरों में भी ऐसी वर्ण का विभाग है, पेड़ों में भी ऐसे वर्ण विभाग है। जो पेड़ फल देते हैं, स्वादिष्ट फल देते हैं, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब सत्व गुण के, और जो फल नहीं देते हैं वो क्या है? तमोगुण के। जो फल, जो पेड़ केवल फूल उपजते हैं परंतु फल पैदा नहीं होता है, वो है रजोगुण के द्वारा प्रभाव। जैसे गुलाब, ये बाकी सारे जो फूल के जो पेड़ हैं, वैसे हम देखते हैं ये चार वर्ण, चार भाग कैसे हुआ है? गुण और कर्म के अनुसार, गुण के अनुसार होता है। सत्व गुण में जो है वो कौन है? वो ब्राह्मण है। रजोगुण में जो है वो कौन है? वो क्षत्रिय है। रजो और तमोगुण का मिश्र गुण में जो है वो है वैश्य, और तमोगुण में जो है वो है शूद्र। तो भगवान ऐसे यहाँ वर्णाश वर्ण, चार वर्ण के बारे में यहाँ अर्जुन के बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए लड़ाई करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। धर्माद्वी युद्धात् श्रेय अन्नत क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए ये युद्ध करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। न बिकंपितुम का शब्द अर्थ क्या है? संकोच करना। अर्हसी का मतलब यज्ञ हो, ये संकोच करना तुम्हारे लिए उचित नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए। तुम लड़ाई करने में अब संकोच कर रहे हो परंतु ये तुम्हारे लायक नहीं। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें, तुमको लड़ाई करना पड़ेगा। अच्छा, हम हर शाम को एक एक श्लोक याद करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? कौन कौन कोशिश कर रहे हैं? हाथ उठाए। शाम को तो अब बहुत सारे आदमी आते हैं, परंतु केवल एक दो आदमी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इस साइड में कोई भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। माता जी, आप माताओं, आपका तो बहुत समय रहता है घर में, तो क्या करते हैं? बाकी समय गीता का श्लोक याद करने का कोशिश करना चाहिए, याद नहीं होता है। कोशिश तो कोशिश होता नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? तो मैं तो बोला नहीं याद करना कर रहे हैं, मैं तो पूछा कोशिश कर रहे हैं, है ना? जो कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश करने से फायदा क्या होगा? हमारा लाभ होगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये जन्म जन्मांतर से भी रह जाता है। अगर ये गीता का श्लोक इस जन्म में आपको ये कंठस्थ हो गया, तो अगला जन्म में भी इसको कंठस्थ होगा। आप देखते हैं कभी कभी किसी आदमी ऐसे गीता का बहुत आसानी से गीता या भागवत का याद कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार है। और जो कोशिश करता है, पूर्व जन्म का अगर संस्कार है, वो आसानी से निकल आता है। तो आप अगर कोशिश करेंगे, देखेंगे आप में से कोई बहुत ही आसानी से भगवद गीता का श्लोक या शास्त्र का जो श्लोक है आसानी से याद कर रहे हैं। और याद करने से फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये आत्मा का साथ रहेगा। ये ज्ञान जो है, ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ये आत्मा का साथ रहता है। भौतिक ज्ञान जो है वो शरीर के साथ रहता है। जब शरीर नाश हो जाता है, शरीर का मृत्यु हो जाता है, तब क्या होता है? भौतिक ज्ञान का भी समाप्त हो जाता है। और अगले जन्म में क्या करना पड़ता है? शुरू से ए बी सी डी से शुरू करना पड़ता है, है ना? हो सकता है इस जन्म में बहुत बड़ा डॉक्टर है या पीएचडी है, परंतु अगले जन्म में जब नया शरीर मिलता है तो उसको ई से शुरू करना पड़ता है। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो आत्मा का साथ रहता है, और उस ज्ञान का नाश नहीं होता है। आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा का साथ जो वस्तु है उसका भी नाश नहीं होता। आपको तो आप तो ये समझ गए ना, आत्मा का कभी नाश विनाश नहीं होता है। इसका विचार भगवद गीता में हम कर रहे हैं, आप दूसरा अध्याय में आत्मा का स्वरूप कैसी है किसको मालूम है? आप आत्मा का एक गुण बताइए। वेरी गुड। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, मतलब क्या है? अस्त्र के द्वारा ये आत्मा को काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावक का मतलब क्या है? आग से इस आत्मा को जला सकते हैं। ना चैनम क्लेदायंत अपो, मतलब आत्मा को पानी के द्वारा भिगाना नहीं जा सकता है। और नायं शोषयति मारुत, तो मारुत का मतलब क्या है? हाँ, हवा। हवा से यह आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। तो यह आत्मा का एक गुण है। इसका मतलब क्या होता है? शरीर को काट सकता है, शरीर को जला सकता है, परंतु आत्मा को नहीं काट सकता है, जला सकता है। मतलब क्या है? आत्मा का मृत्यु नहीं होता है। काटने से क्या होता है? शरीर को अगर काट दिया तो क्या होगा? शरीर का मृत्यु हो जाता है। परंतु आत्मा का क्या मृत्यु होता है? आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है। मतलब आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो आत्मा का विनाश नहीं होता है, तो आत्मा का साथ जो है, आत्मा का जो गुण है, जो आत्मा गुण जो प्राप्त हो चुका है, वो आत्मा का साथ रहेगा हर समय। तो ये गीता का ज्ञान जो है, ये क्या भौतिक ज्ञान है या आध्यात्मिक ज्ञान है? ये आध्यात्मिक है, मतलब ये आत्मा का ज्ञान है। तो इस ज्ञान आत्मा का साथ हर समय रहता है। तो इसीलिए हम आपको अनुरोध कर रहे हैं कि ये गीता का ज्ञान जो है, ये बहुत सही रूप से बहुत अच्छा तरह प्राप्त होने की कोशिश की। करने से किसका कल्याण होगा? मेरा कल्याण होगा या आपका कल्याण होगा? तो अपना कल्याण जिससे होता है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप करेंगे? जो करेंगे दो हाथ उठाइए। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। अच्छा, तो याद करने का तरीका हम स्टेप बाय स्टेप बताया था, क्रम के अनुसार बताया था। कौन सी पहला स्टेप क्या था जो हम अभी अभी किया है? वो क्या है? बार बार उसको उच्चारण करना। बार बार उच्चारण करने से याद आचा याद रह जाता है, याद होता है ना, स्मरण हो जाता है। तो वो तो हम कर लिया है। तो अब याद हुआ क्या नहीं ये हम अगर परीक्षा करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो बोर्ड ना देख के हमको चेष्टा करना पड़ेगा कि हमको याद आ रहा है नहीं, है ना। अच्छा, तो याद करने का नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये श्लोक का जो पहला शब्द है उसको याद करने का, उसको स्मरण करने का कोशिश करना। अच्छा, तो आप बताइए ये श्लोक का पहला शब्द क्या है? स्वधर्मम। तो ये स्वधर्मम ये याद होने से बाकी लाइन आ जाता है क्या? नहीं। हाँ, स्वधर्मम और बाकी लाइन क्या हुआ है? साधर्मम अपि चावेक्षा। अच्छा, दूसरा लाइन का पहला शब्द क्या है? अच्छा, और बाकी क्या है लाइन? ना विकंपितुम अर्हसि, ना विकंपितुम अर्हसि। और तीसरा लाइन का पहला शब्द क्या है? धर्माधि श्रेय अन्यत, धर्माधि श्रेय, धर्माधि जब जब अक्षय, धर्माधि जो धर्माधि युद्धात, धर्माधि युद्धात ये श्रेय अन्यत, धर्माधि युद्धात श्रेय अन्यत। तो तीसरा लाइन का पहला शब्द क्या हुआ था? धर्माधि। बाकी लाइन क्या है? धर्माधि युद्धात श्रेयान्यत। और चौथा लाइन का पहला शब्द क्या है? ना, बाकी नहीं, बीच में एक छोड़ गया है, क्षत्रियस्य न बिंदते, ना क्षत्रियस्य न बिंदते। तो अब थोड़ा थोड़ा याद आ गया है ना। फिर से ये श्लोक का पहला शब्द क्या है? साधर्मम अपि चावेक्षा, न विकंपितुम अर्हसि, धर्माधि युद्धात् श्रेयान्यत्, क्षत्रियस्य न विद्यते। ठीक है। ओके। अच्छा, ये और ये तो सेकेंड स्टेप गया। थर्ड स्टेप क्या है? ये हर शब्द का अर्थ क्या है वो स्मरण, वो याद रखना। तो वैसे देखिए कठिन शब्द इसमें क्या है? सधर्म तो वो सही शब्द है, ये तो हम बहुत आसानी से हमको याद आ रहे हैं, है ना। सधर्मम, स्वधर्मम, अपना धर्म, अपना धर्म, अपना अपने धर्म को। स्वधर्मम अपि, अपि का मतलब भी, चा अवेक्षा, चा अवेक्षा निश्चय रूप में विचार करके हमें क्या पता चलता है? न विकंपितुम अर्हसि। विकंपितुम का अर्थ क्या है? विकंपितुम, संकोच। न शब्द तो हिंदी में ही एक ही है, नहीं, अर्हसि करना चाहिए। और धर्मात मतलब धर्म से, धर्म से ही युद्धात श्रेय अन्नत। श्रेय का मतलब, श्रेय का मतलब श्रेय, श्रेष्ठ साधन, श्रेष्ठ साधन, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का न विद्यते है या विद्यते का मतलब ऐसे हिंदी में क्या होगा, विद्यते का मतलब विराजमान है, विद्यमान शब्द होता है, विद्यमान या विराजमान नहीं मतलब नहीं है, न विद्यते नहीं है क्षत्रिय के लिए, इससे आगे बढ़कर इसके इससे श्रेष्ठ धर्म और कोई नहीं है। तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, धर्म के लिए युद्ध करना, धर्म को रक्षा करने के लिए युद्ध करना। यह गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, हम बताया था कई बार, आप में से किसी को पता है, ये श्लोक जो है वो एक कागज में लिख लीजिए, लिख के अपने जेब में रख दीजिए, कल दिन भर ये कभी कभी जब फुर्सत मिलेगा इसको याद करने का कोशिश करना, अगर याद नहीं आया तो जेब से निकल के वो थोड़ा देख लेना, देखने से ही याद आ जाएगा, है ना। अच्छा, और पंचम स्टेज क्या है, इसको ताकि वो माता जी जो कह रहे थे कि कोशिश करता है परंतु याद नहीं रहता है, तो ऐसे सही रूप से याद रखने के लिए क्या करना चाहिए, कि एकदम मन में इसको अच्छा तरह से रिकॉर्ड करके रख देना। मन हमारा मन जो है टेप रिकॉर्डर जैसे है, तो टेप रिकॉर्डर का भी हेड होता है, टेप हेड कहा जाता है, तो टेप हेड जब खराब हो जाता है तो रिकॉर्ड नहीं करता है, तो हमारा हेड जब खराब हो जाता है तो याद नहीं रहता है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको सफाई करना चाहिए, नहीं तो बहुत अच्छा तरह से उसको कस के दाब के ये कस के उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें से एक तरीका ये है कि संगीत के रूप में जब हम गाते हैं तो याद रह जाता है। जैसे आप सोचिए, कल मैं एक गाना एक ये गाया था, धुन गाया था, वो क्या था, अच्छा ये तो आपको याद आ गया है, परंतु काल को श्लोक हम याद करने की कोशिश किया वो याद है किसको नहीं, क्यों, क्योंकि हम गाया था, गाने के कारण वो हमको याद आ गया, बहुत सहज आसानी से उसको याद हो गया था। तो ऐसे गाने के लिए कोशिश करना, ये सधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पी तुम अर्हसि धर्माधि युद्धा श्रेयान्न क्षत्रियस्य न विद्यते। तो हम थोड़ा आप गाने के लिए गाने का कोशिश करेंगे, हाँ तो देखते हैं ये गाना गाने से शायद आप सबको याद रहे, और घर में भी जाकर अगर हम भी नहीं गाया तो और खुद सुर लगा के आप भी गा सकते हैं, सुर तो मालूम है ना, आप तो बाथरूम में गाते हैं ना गाना तो एवरीबॉडी আমি যে হারমোনিয়ামটা এনেছিলাম ওটা কোথায়, এটাই কি, এটাই I'm सोचिए, आप गाइएगा अभी एक साथ पूरा श्लोक का। स्वधर्ममपि चावेक्षा नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्विजुद्धाच्छेयान्यान्नाविकम्पितुमर्हसि क्षत्रियस्यानाविद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष।
नहीं,
आप साथ साथ गाना चाहिए, आप बहुत बार आगे पीछे हुआ है, अब एक साथ होना चाहिए, आलसी मत होना। हाँ, आलसी मत होना। हाँ, अगर आलसी मैं देखूंगा तो मैं डांटूंगा आपको। हाँ, ठीक है। सधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्विजुद्धाच्छेयान्यान् क्षत्रियस्य नाविद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि धर्माद्विजुद्धाच्छेयान्यान् क्षत्रियस्य नाविद्यते स्वधर्ममपि चावेक्ष नाविकम्पितुमर्हसि माध्वीयुद्धाच्छेयान्यान् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब आप गाइए। बताइए किसका कंठस्थ हो चुका है, हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप संकोच क्यों कर रहे हैं? ना बिकम्पी तुम्हार हसी संकोच नहीं करना चाहिए। बताइए आप। स्वधर्मम, सधर्मम अपि, अन्नत, बहुत अच्छा। तुम बताओ। स्वधर्म बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कौन बताएंगे? लेडीज साइड इज विनिंग नाउ। यहां कौन बताएंगे? श्रेय अन्न ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब इस साइड ओके बहुत अच्छा। इस साइड अभी ओके जैसा आपको वहां देख के नहीं अच्छा अब इस साइड अच्छा ठीक है। और कोई अच्छा हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ आर्थिक आसिक आरती
बिलीवर
अच्छा हाँ ओके बहुत अच्छा। क्या तुम कोशिश करेगा बोलने का? बताओ, खड़ा हो जाओ। वहां मत देखना, वहां देख, उस तरफ देख, खड़ा हो जाओ उस साइड में देख। तो पहला शब्द क्या है? शर्मा न मत। हाँ बताओ बताओ, शर्माने की कोई बात नहीं। धर्माद्वि युद्धा श्रेयान्न क्षत्रियस्य न विद्यते। बहुत अच्छा। तुम ऐसे घबरा गए क्यों? घबराए क्यों? हाँ तुम शर्माता है, घबराता है, क्या होता है तुम्हारा? लड़के लोग घबराता है शर्माती है, तुम तो लड़का हो, है ना? शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं। वो देखो ये आरती कैसे सुंदर रूप से बताया। और कौन बताएंगे इस साइड में? आपको आपका याद आया? हाँ नहीं क्यों? अच्छा आपको हो चुका है, आप बताइए। अच्छा ओके ठीक है। तो हम हाँ ये श्लोक का अर्थ सबको पता चल गया है। कितने वर्ण हैं मनु समाज में? चार। और ये वर्ण का तैयार कौन किया है? भगवान किया है। ये चार वर्ण का सृष्टि भगवान किया है। आपको कैसे पता? हाँ कैसे आपको पता चला? क्योंकि भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? चातुर्वर्णं माया सृष्ट गुण कर्म विभागश। ये चार वर्ण मैं सृष्टि किया हूं गुण और कर्म के अनुसार। चातुर्वर्णं माया सृष्ट गुण कर्म, गुण और कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं। भगवान नहीं कहते कह रहे हैं कि जन्म के अनुसार ये वर्ण विभाग हुआ है, गुण और कर्म के अनुसार हुआ है, गुण कर्म विभाग। तो ये चार वर्णों में जो गुण और कर्म इसका ये कैसा हो रहा है, उसका वृत्ति के अनुसार हो रहा है, उनका जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के अनुसार हो रहा है। मतलब जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही है, उसको हाँ उसको स्वाभाविक रूप से वो ब्राह्मण है। क्यों? क्योंकि उसका मनोभाव ही वैसा है, उसका चरित्र का गठन ही वैसा है, क्योंकि वह सत्वगुण के द्वारा वो प्रभावित है। वैसे ही रजोगुण के द्वारा जो प्रभावित है वो रजोगुण के प्रभाव में जो है वो क्या है, वो क्षत्रिय है। और रजो और तमोगुण के प्रभाव में जो है वो है वैश्य, और जो तमोगुण के द्वारा प्रभावित है वो है शूद्र। मैं जो कह रहा था कि ये केवल क्या भारत के समाज में ही हम देखते हैं ना, आप कहीं भी जाए देखेंगे ब्राह्मण, मतलब कोई आदमी है जो वैसे वो जो फिलोसॉफिकली इंक्लाइन दार्शनिक मनोभाव जिसका होता है ना, वो सब समाज में आप देखेंगे वैसे हैं। और जो वॉरियर्स लड़ाई करने वाला वो भी है, आप अफ्रीका के जंगल में भी गए वहाँ भी देखेंगे, वहाँ के समाज में भी कोई ऐसी है जो उसके ये है बहुत प्राज्ञ आदमी होता है, उस जब सब उसको मानता है वो समझता है कि वो सबसे ज्ञानी है, तो वह है ब्राह्मण जैसा। और उस समाज में राजा है, लड़ाई करने वाला है राजा के साथ, वो है क्षत्रिय। वहाँ कारोबार करने वाला कोई है जो दुकान लगाता है, दुकान लग जंगल के अंदर भी वह दुकान बनाए हैं, दुकान बना के वो बिकता है, वो है वैश्य। और जो दूसरे के लिए काम करता है वो है शूद्र। ये कहीं भी आप जाइएगा आप ये चार वर्ण पाएंगे। चातुर्वर्णं माया शिष्ट गुण कर्म विभाग। तो ये हम अब ये पता चला जिसका जो वर्ण धर्म है उस धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिसका जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार करना चाहिए, परंतु कैसे करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। ये है जो वर्णाश्रम समाज जो हमारा सनातन धर्म में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी केवल भगवान के लिए ही काम करता था। ब्राह्मण जो है था वो क्या करता था, भगवान के बारे में ज्ञान प्रदान करता था, ने उपदेश देता था। क्षत्रिय जो था वो क्या करता था, ये धर्म को रक्षा करने के लिए लड़ाई करता था। जैसे आपको मालूम है शायद ये जो सिख जो है खालसा सिख, ये सिख का सिख धर्म का जो ये कौन प्रवर्तन कौन किया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह। क्यों किया था मालूम है आपको? हाँ, क्योंकि कश्मीर से ब्राह्मणों ने आकर उनको बताया कि हम पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, धर्म खतरे में है, मुसलमानों ने ऐसे हमको ये कर रहा है, हत्या कर बहुत मुसलमान ब्राह्मणों को ये हत्या कर रहा था, हिंदू धर्म को ये कर रहा था। तो रक्षा करने के लिए उनके पास आवेदन पेश किया। तब गुरु गोविंद सिंह अपने जो जितने सारे ये था अनुयायी थे उनको बुलाए, तो बुलाकर पूछा धर्म खतरे में है, इसको रक्षा करना चाहिए, तो धर्म को रक्षा करने के लिए कौन अपने जान देने के लिए तैयार है? तो एक आगे आए बढ़ गए बोला मैं तैयार हूं। तो गुरु गोविंद सिंह उसको अपना टेंट के अंदर ले गया, वो बोला कि हाँ गुरु गोविंद सिंह बोले थे कि धर्म रक्षा करने के लिए बलि होना चाहिए, बलि चाहिए, मतलब जो अपने आप को बलिदान करेंगे, तो कौन ये बलि देना चाहते हैं? बलि बनना चाहते, तो गुरु गोविंद सिंह ने उसको अपना ताबू के अंदर ले गया और कुछ बाद वो चक्कू हाथ में लेकर आए, तलवार हाथ में लेकर निकला और तलवार खून से, तलवार में खून लगा हुआ था। तो बोले एक का बलिदान हो गए, और भी बलि का जरूरत है, कौन आएगा? तो एक आगे बढ़ गया। वैसे एक के बाद एक पांच आदमी ऐसे अपने आप को बलि देने के लिए तैयार होकर गोविंद सिंह के पास आए थे। तो एक के बाद एक गोविंद सिंह उसको ताबू के अंदर ले गया और अपना तलवार हाथ में लेकर आए बाहर, जिसमें खून लगा हुआ था। तो बाद में वो पांचों को आकर लाकर बाहर में आए, तो मतलब उनका ये था कि तुम जान देने के लिए, बलिदान होने के लिए तैयार हो, परंतु वैसे बलिदान नहीं, अपने और धर्म को रक्षा करने के लिए तुम कौन प्रस्तुत हो, कौन तैयार हो। तो ये पांच को क्या कहते थे? पांच प्यारे। और जो ऐसे गुरु गोविंद सिंह धर्म को रक्षा करने के लिए एक क्षत्रिय बनाने का ये एक प्रवर्तन किया था, जो जिसे खालसा कहा जाता है या सिख कहा जाता है। सिख का मतलब क्या है? सिख का मतलब है जो सीखने के लिए तैयार है। गुरु का जो शिष्य है वो है सिख। सिख कोई असल धर्म नहीं। जाए श्री राधा मदन मोहन। सिख धर्म कोई अलग धर्म नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने वो जो क्षत्रिय का धर्म जो है, उस धर्म को पुनराय प्रवर्तन करने, फिर से प्रवर्तन करने के लिए ये कोशिश किए थे। परंतु ज्ञान के अभाव से आज क्या हुआ, वो अलग हो गए, वो हिंदू का विरोधी बन गया है। परंतु असल में हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ये खालसा पंथा की प्रवर्तन किया था। तो वैसे हम देखते हैं खत्री क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? धर्म को रक्षा करना। आज क्षत्रिय नहीं है, उसलिए धर्म की रक्षा करने वाला कोई नहीं, और उसके कारण धर्म का हाल देखिए कैसा हुआ है। हरे कृष्णा।